इनके अतिरिक्त कवियों ने इव आदि लगाकर भी उत्प्रेक्षाएँ की हैं, जैसे चमचमात चंचल नयन मुख घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। पर गंगा के विमल जल में युगमीन का उछलना लोकसिद्ध है, इसलिए सही अर्थ में इसे उत्प्रेक्षा का विषय नहीं माना जा सकता। यों अपने आप में भी यह अप्रस्तुत कोई खास संवेदना बिंब नहीं प्रस्तुत करता। कालिदास का एक बिंब देखिए जिसमें स्पंदित आँखों का अतिशय संवेदनात्मक रूप अंकित किया गया है। रुद्धा पांग प्रसर मलकै रंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रू विलासम त्वया सन्ने नयनमुपरि स्पंदि शंके मृगाक्षा मीनक्षोभा चकुल वलयश्री तुला मेष्यतीत। हाय मित्र, जब वे बिखरे बालों से अवरुद्ध कटाक्ष वाले अनजाने नयन ऊपर की ओर फड़केंगे तो उस नील कमल की मोहिनी शोभा धारण करेंगे जो चंचल मछलियों के उधम से चटुल हो उठता है। जब मैं मीन क्षोभ से चटुल बने कुवलय कुष्ठ में नील कमल की शोभा धारण करने वाले नयनों की कल्पना करता हूँ तो जी में अजब कचोट अनुभव करता हूँ। हजाइब सात द्विवेदी मेघदूत एक पुरानी कहानी पृष्ठ संख्या 153 से 174 से उद्धृत। यह अप्रस्तुत की बिंब निर्माण क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी गहरी संवेदना जागृत कर सका है। जब अप्रस्तुतों के मूल में गूढ़ संवेग कॉम्प्लेक्स इमोशंस रहते हैं तो वे चित्रकला को व्यापक और गहरा बना देते हैं। विरोध मूलक इसके अंतर्गत विरोधाभास विभावना विशेषोक्ति अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की गणना की जाती है। विरोधाभास के विरोध वास्तविक न होकर आभास मात्र होता है। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन विभावना है, विशेषोक्ति विभावना का उल्टा होता है, अर्थात यहाँ कारण के वर्तमान होने पर भी कार्य नहीं हो पाता। असंगत कार्य कारण विरोध मूलक अलंकार है, इसमें कारण कहीं होता है और कार्य कहीं। अतिशयोक्ति भी मूलतः विरोध मूलक अलंकार ही है। अब सच्चाई में प्रयुक्त कुछ उदाहरणों की परीक्षा कीजिए। एक, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दो, लहि रति सुख लगिय हिये लखौ लजौ ही नीठ खुलति नमो मन बंधि रही वह अधकुली दीठ। तीन, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। विरोधाभास। चार, रस सिंगार मंजन किए रंजन भंजन नयन अंजन रंजन हु बिना खंजन गंजन नयन। पाँच, अंग अंग नग जगम गए दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हूर है बड़ो उजारो गेह। छ, सतर भाव रूखे बचन करत कठिन मन नीठ कहा करौ होय जाति हरि हेरि हसौ ही डीठ। विभावना। सात, जदपि चवाई निचिकनी चलत चहू दिशि सैन तऊ न छाणत दुहुन के हसी रसीले नयन। आठ, निश अंधियारी नीलपट पहिर चली पिए गेह कहो दुराई क्यों दुरै दीप सिखासी देह। लाल तुम्हारे विरह की अगनि अनूप अपार सरसय बरसय नी रहूं झरहु मिटै न झार। विशेषोक्ति। नौ, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दिर्जन हिये दई नई यह रीत। दस, छिरके नाह नवोढ़ दृग कर पिचकी जल जोर रोचन रंग लाली भई बियती लोचन कोर। असंगति। 11, सुदुति दुराई दुरति नहीं प्रगट करति रति रूप छूटे पीक अवरे उठी लाली ओठ अनूप। अतिशयोक्ति। कहना न होगा कि ऊपर उद्धृत उदाहरणों में से अधिकांश बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण हैं। वास्तव में यही बिहारी का प्रकृत क्षेत्र भी माना जा सकता है। इन अलंकारों का भी मुख्य उद्देश्य है भाव या रस का उपकारक होना। चमत्कार पूर्णता के साथ साथ इनका रसाक्षिप्त होना भी आवश्यक है। इनमें वैदग्ध्य उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है जहां संवेदनात्मकता से उसका सांस छूट जाता है। प्रत्येक अलंकार प्रत्येक संदर्भ में औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता। उपमा और रूपक के प्रयोग में बिहारी को प्रायः सफलता नहीं मिल पाई है, किंतु विरोधमूलक अलंकारों में उन्होंने पर्याप्त कुशलता का परिचय दिया है। बिहारी अपनी सजगता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह सजगता शब्दों के प्रयोग वाक्य या अलंकार विन्यास में सर्वत्र दिख पड़ती है। उपमा और रूपक का संबंध संवेदना की जिस गहराई से है वह बिहारी में नहीं है, इसलिए चमत्कार के चक्कर में फंसे रहने के कारण उनके प्रयोग में वे संवेदना से प्रायः असंपृक्त हो गए हैं। विरोधमूलक अलंकारों में उनको अपना स्वाभाविक क्षेत्र मिल गया है। अत्युक्ति चमत्कार की चरम सीमा। लोक कल्पना की सीमा में न आने वाली जिन उहाओं का आधार बिहारी ने अपनी अत्युक्तियों में लिया है वे एकदम संवेदना विरहित हैं। कहीं कहीं तो वे एकदम उपहासास्पद हो जाती हैं। रेतकाल के अनेक कवियों पर फारसी कविताओं का प्रभाव पड़ा है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का। अत्युक्तियाँ उनके बुरे पक्ष मुआलगा से आत्यंतिक रूप से प्रभावापन्न हैं। उदाहरणार्थ एक, सीरे जतनन शिशिर ऋतु सही बिरहीन तप तन ताप, बसिबे को ग्रीषम दिननी परे परोसिन पाप। दो, आड़े दय आले बसन जाड़े हूँ की राति, साहस ककय स्नेह बस सखी सबय ठिक जाति। तीन, औंधाई शीशी सुलख बिरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गौ छींटव छुई नगात। शब्दालंकार। अर्थालंकारों की भांति यदि शब्दालंकार रस पोषक होकर आते हैं तो उनकी उपयोगिता में कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वस्तुतः शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही रस के उपयुक्त साधक भी बन सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं, परंतु जिस काव्य में केवल शब्दालंकार ही झंकार उत्पन्न करता है अर्थ का भार कम होता है वह एक प्रकार भी असांद्र अनुभूतिजनक आवेग का कंपन उत्पन्न करता है। वह न तो वह संगीत की अबाध गति उत्पन्न कर पाता है न अर्थ जगत से संपूर्ण रूप से विच्छेद ही कर पाता है। उसके शब्द बराबर बाह्य सत्ता से श्रोता का संबंध स्थापित करते रहते हैं और स्वर के स्वच्छंद प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। अर्थभारहीन शब्दालंकार न तो काव्य की गाढ़ अनुभूति ही पैदा करते हैं न संगीत का प्रवाह ही, वे दोनों केवल घटिया प्रवाह ही उत्पन्न कर सकते हैं। रेतकाल के कवियों में शब्दालंकार के प्रयोग बहुत हैं, पर अधिकतर वे काव्य के घटिया प्रभाव को उत्पन्न करके रह जाते हैं। अर्थ की बाह्य सत्ता से उनका जितना संबंध होता है उतना रमणीयता करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। शब्दालंकार में मुख्यतः अनुप्रास श्लेष और यमक के प्रयोग बहुत हुए हैं। रेतकाल का कोई ऐसा कवि न मिलेगा जो अनुप्रासों के चमत्कार से घिरा हुआ न हो। कभी कभी तो यह दो दो तीन तीन चरणों तक चलता रहता है। अनुप्रासों का अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी रीत कवियों को इनकी क्रीड़ा कुछ ऐसी रुचिकर प्रतीत हुई है कि यह उनकी शैली का अंग बन गया है। बिहारी के कुछ उदाहरण देखिए। सहित स्नेह सकोच बस स्वेद कंप मुस्कान, ढरक ढार ठुरी ठिग भई ठीठ टिठाई आय। उनके अधिकांश दोहों में अनुप्रास का चमत्कार दिखाई देगा, पर इस काल के अन्य कवियों की तुलना में बिहारी में संयम और संतुलन अधिक दिखाई देता है। श्लेष में चमत्कार के साथ ही अर्थभार भी उचित मात्रा में होता है। स्वभाविक को छोड़कर यह अन्य अलंकारों का सहायक होता है। श्लेष पुष्णात सर्वासु प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियं दंडी। अभिनव गुप्त का कहना है कि यह उपमा गर्भ अलंकारों का सहायक सिद्ध होता है। बाण के मतानुसार श्लेषोक्लिष्ट, श्लेष को अक्लिष्ट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि संयमपूर्ण ढंग से प्रयुक्त होने पर यह अलंकारों का सौंदर्य विधायक होता है। हाँ, उससे नाना अर्थ निकालने की चेष्टा उसको विकृत कर देगी। काथ के मतानुसार अलंकारियों और नानार्थीवादियों ने इनका अत्यधिक दुरुपयोग किया है। डॉक्टर राघवन ने परवर्ती काल के पंडितों के संबंध में बताया है कि श्रेष्ठ शब्दों या पदों के बिना उनका लिखना असंभव था। कभी उनके द्वारा हम दो विचारों में सादृश्य भर स्थापित कर पाते हैं और कभी कवियों की मौलिकता पर संतुष्ट हो जाते हैं और भाषा पर उनके अधिकार की दाद देने लगते हैं। बिहारी ने जहाँ पर श्लेष का प्रयोग किसी उपमा गर्भ अलंकार को पुष्ट करने के लिए किया है, वहाँ पर तो यह उसका उपकारक सिद्ध हुआ है, अन्यथा नहीं। कुछ उदाहरण देखिए। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह तौ प्रकाश करय तितौ भरियय जितो स्नेह। दो, आवत जात न जानियत तेजहि तज सीरान घरह जवाई लव घट्यो खरो पूस दिन मान। पहले उदाहरण में श्लेष से पुष्ट रूपक है, दूसरे में पूर्णोपमा। पहले में सगुण और स्नेह चमत्कार होने के साथ साथ रूपक के निर्वाह में पूर्ण योग देते हैं। दूसरे दोहे के मान को भी पूर्णोपमा का उपकारक कहा जाएगा। अब चमत्कार खड़ा करने वाले कुछ उदाहरण देखिए। अजौ तरवना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। कुठंग कोप तज रंग रली करत जुवत जग जोय पावस गूढ़ न बात यह बूढ़ न हूँ रंग हो। पहले उदाहरण के श्लेष पर तो बिहारी की चमत्कारिता की दाद दी जा सकती है। दूसरे उदाहरण में रंग का अशक्त सादृश्य प्रस्तुत किया गया है। यमक प्रायः प्रयत्न साध्य होने के कारण कवि को रस समाहित नहीं रहने देता। श्रृंगार रस में तो यह और भी अनुपयुक्त ठहरता है, पर बिहारी ने इस अलंकार का भी प्रचुर प्रयोग किया है। रस कविता का प्राण है और अलंकार उसका पोषक। अलंकार का प्रयोजन भावानुभूति को सांद्र बनाता है, यही उसके कार्य की सीमा है। शब्दालंकार हो चाहे अर्थालंकार, दोनों साध्य हैं। काव्य प्रक्रिया में वे सहज ही योग देते हैं, इसलिए उन्हें रसाक्षिप्त और अपृथग्यत्न निर्वर्त्य कहा गया है। कवियों के रसोपासक होने का कारण बताते हुए महिम भट्ट ने कहा है, विनोदकर्षापकर्षाभ्याम स्वदंतीर्था न जातुचित तदर्थमेव कवयोलंकारान्न पर्युपास्ते।